तारीख 5 मई दिन मंगलवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने वाले कॉन्टेस्ट स्थल के पास हुए हमले में हमलावरों की हुई पहचान, पर स्थानीय पुलिस ने कहा कि वो नाम नहीं बताना चाहती।
There's a lot of things that I know is going out and some people are releasing names. We are not releasing any names.
नेपाल सरकार ने विदेशी राहत कर्मियों से कहा कि काम हुआ पूरा, इसलिए वो वापस जाएं। करेंगे विश्लेषण।
शायद उनको लगने लगा था कि हमारे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है, सब अंतर्राष्ट्रीय जगत वाले करेंगे तो हम यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखेंगे।
माओवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बस्तर दौरे का किया विरोध। खबरें और भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका के डालास शहर के गारलैंड इलाके में हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनके नाम हैं एरिजोना निवासी एल्टन सिम्पसन और नादिर सोफी। हालांकि अब तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। यह हमला एक ऐसी जगह पर हुआ था जहां पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने की प्रतियोगिता चल रही थी। सेनेगल ने कहा है कि वो यमन में शिया हूती विद्रोहियों से लड़ाई में अरब गठबंधन की मदद करेगा और इसके लिए अपने 2000 सैनिक भेजेगा। इस गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। सेनेगल इस लड़ाई में अरब गठबंधन को सीधे मदद करने वाला पहला गैर अरब देश है। सऊदी अरब ने पिछले महीने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सल की यात्रा के दौरान उनसे इस लड़ाई में मदद की अपील की थी। सेनेगल भी सऊदी अरब की तरह ही सुन्नी मुसलमान बहुल देश है और हाल के सालों में उसे सऊदी अरब से खासी मदद मिलती रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं से आग्रह किया है कि वो सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी फौरन बंद करें, क्योंकि इससे युद्ध प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाए जाने और घायलों को निकालने में मुश्किल हो रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इस हवाई हमले को रोकने पर विचार करेगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल से किसी भी कीमत पर नस्ल भेद को खत्म करना होगा। राजधानी तेल अवीव में इथियोपियाई मूल के एक इसराइली सैनिक की 2 पुलिस वालों ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वहां दंगे भड़क गए थे। तब उस घटना के शिकार पुलिस वाले ने अपने समुदाय के लोगों से हिंसा खत्म करने की अपील की। नेतन्याहू ने पीड़ित सैनिक से मिलने के बाद कहा, तुम एक मिसाल हो। हिंसा खत्म करने की अपील करके तुमने दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हम इस देश में किसी भी तरह का नस्ल भेद, भेदभाव और बदजुबानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक इसराइली सैनिक की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले में पुलिस हर किस्म की जरूरी कार्रवाई करेगी। हम इसराइली समुदाय को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के कदम उठाएंगे। ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। पिछले महीने आए भूकंप की वजह से नेपाल का एक गांव लंगतंग पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये गांव ट्रैकिंग के लिए मशहूर था और कई देशों से पर्यटक यहां आते थे। भूकंप के बाद आए भूस्खलन और भारी बर्फबारी की वजह से ये गांव दब गया। यहां करीब 300 लोग मारे गए, जिसमें से आधे विदेशी पर्यटक होने की आशंका है। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और मान चुके हैं कि उनकी पार्टी ये चुनाव नहीं जीतेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में प्रभात पांडे से सुना कि अमेरिका के डलास शहर में कल पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने वाले कॉन्टेस्ट स्थल के पास जो हमला हुआ था, उसके हमलावरों की पहचान कर ली गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक हमलावर की पहचान एरिजोना के रहने वाले एल्टन सिम्पसन के नाम से हुई और दूसरे हमलावर का नाम नादिर सोफी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने किसी का नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन कहा है कि उनके पास हमलावरों के बारे में सूचनाएं हैं। पुलिस प्रवक्ता जोहान कहते हैं, मुझे मालूम है कि बाहर कई तरह की बातें हो रही हैं, कुछ लोग हमलावरों के नाम बता रहे हैं, लेकिन हम इस समय किसी हमलावर का नाम नहीं बताने जा रहे। हम जांच जारी रखेंगे और ये बहुत तेजी से चलने वाली जांच नहीं होगी। हमने संदिग्धों को पहचान लिया है, हमारी नजर सोशल मीडिया पर भी है और साथ ही खुफिया जानकारी भी जुटा रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रवक्ता जो हार्न के शब्द। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं बीबीसी वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय को। ब्रजेश, हालांकि पुलिस आधिकारिक रूप से किसी हमलावर का नाम नहीं बता रही, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हमलावरों की पहचान हुई है, उनके बारे में बताइए।
देखिए मोहनलाल, जब पुलिस के प्रवक्ता, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में सुबह में करीब 11 बजे हुई थी अमरीकी वक्त से, और अब शाम हो चुकी है, तो देर शाम में कुछ अधिकारियों के हवाले से यहाँ मीडिया ने इन दोनों हमलावरों की का नाम बताना शुरू किया है। एक का नाम है एल्टन सिम्पसन, जिन्होंने कई साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया था, और दूसरे से नादिर सूफी। पुलिस ने कल रात की घटना का जो ब्यौरा दिया उसके मुताबिक टेक्सस के गार्लैंड शहर में पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून बनाने का मुकाबला आयोजित किया गया था। सुरक्षा काफी कड़ी थी और समारोह खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले ये दोनों शख्स एक गाड़ी से वहां पहुंचे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। उनके हाथों में असॉल्ट राइफल्स थे और जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस अफसर ने अपने सर्विस पिस्टल से गोली चलाई और दोनों ही वहीं मारे गए। उनकी कार से पुलिस को अतिरिक्त और ज्यादा यानी कारतूस भी मिले, और पुलिस का कहना है कि साफ जाहिर था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के इरादे से आए थे। अधिकारियों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सिम्पसन पर काफी समय से FBI की निगाह थी। 2010 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उन पर अफ्रीका जाकर जिहादियों के साथ शामिल होने की योजना बनाने का आरोप लगा था। सभी आरोप साबित नहीं हो पाए थे और अदालत ने उन्हें 3 साल के पैरोल पर रिहा कर दिया था। और अधिकारियों का ये मानना है कि हमलावरों ने इस हमले से ठीक पहले टेक्सस अटैक नाम से ट्विटर पर एक हैशटैग भी जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि मे अल्लाह एक्सेप्ट मुजाहिदीन, कि अल्लाह हमें मुजाहिदीन के तौर पर कबूल करे। और आज ही व्हाइट हाउस और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की भर्त्सना की है और कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी सभी की है और बात कैसी भी हो, कैसी कितनी भी उकसाने वाली हो, वो हिंसा को सही नहीं ठहरा सकती, जस्टिफाई नहीं कर सकती।
बिल्कुल ब्रिजेश, ये जो आयोजनकर्ता थी जिनका की नाम पामेला गेलर बताया जा रहा है, इनके बारे में बताइए कि जो इनकी विचारधारा है किस तरह की रही है।
देखिए, एक अमेरिकन फ्रीडम डिफेंस इनिशिएटिव नाम की संस्था चलाती हैं और उन्हें उनके इस्लाम विरोधी विवादास्पद बयानों के लिए जाना जाता है। कुछ ही महीनों पहले आपको याद होगा, हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट भी की थी कि न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर इस्लाम विरोधी इश्तेहार पूरा छपा लगाए गए थे। ये इन्हीं के तरफ से हुआ था और अभिव्यक्ति की आजादी के हक के तहत अदालत भी उन्हें रोक नहीं सकी थी। इस आयोजन की जो ये गार्लैंड शहर में जो हुआ है उसकी खासियत ये थी कि यहीं पर जनवरी में इस्लाम समर्थकों और प्रचारकों ने एक सम्मेलन आयोजित किया था जो उनके शब्दों में इस्लाम की नकारात्मक छवि को सुधारने की कोशिश थी, लेकिन पैमेला गेलर और उनके सहयोगियों ने इसे आईसिस और अलकायदा के रंग रूट बहाल करने का अभियान का नाम दिया था। गेलर को आशंका भी थी कि इस तरह का हमला हो सकता है इस कार्टून कॉन्टेस्ट के स्थल पर, और उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को अमरीकी नियमों के तहत $10,000 की राशि दी थी। और उन्होंने हमले के बाद बयान देते हुए कहा है कि हमला साफ दिखाता है कि वो सही थी और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वो लड़ती रहेंगी, और उनका ये कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जिहादियों के खिलाफ है। तो अभी फिलहाल मोहनलाल इसकी तफ्तीश FBI और स्थानीय पुलिस कर रही है और अभी सीधे तौर पर इस हमले को उस कार्टून के कंपटीशन से जोड़ा नहीं
जा सकता। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था उस पर जो हमला हुआ उसके हमलावरों की पहचान हो गई है।
नमस्कार भारत, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 और 8:00।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख नेपाल का। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में काम कर रहे विदेशी राहत कर्मियों को वापस चले जाने को कहा है और दावा किया है कि ज्यादातर काम हो गया है। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम देशों से लोग वहां पर आए और इस समय राहत का काम भी चल रहा है, लेकिन नेपाल सरकार के इस कदम के पीछे असल वजह क्या है, क्या इसके कुछ अंदरूनी राजनीतिक और कूटनीतिक कारण हैं? यही सब जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की काठमांडू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सी के लाल से।
पहली बात हम करें अंदरूनी राजनीति की। माओवादी सशस्त्र संघर्ष के बाद से, जो कि सन 2006 में समाप्त हुआ था, तब से नेपाली सेना की छवि कुछ अच्छी रह नहीं गई थी और मनोबल भी कुछ कमजोर पड़ गया था। तो इन मौके पर, इस विपत्ति में शायद सेना को लगा कि हम अपनी छवि सुधार सकते हैं, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय बचाव की टोलियां हैं तो वो ज्यादा तालीम प्राप्त है, उनके पास नए उपकरण है, तो वाह वाही वो ले जाते हैं, सेना को मिल नहीं पाता है वाह वाही। तो अपना छवि को बचाने के लिए भी सेना का रुचि था कि जो बचाव का काम है उस पर हमारा एकाधिकार कायम रहे।
ये तो हुई सेना की भूमिका की बात, नेपाल की राजनीति कुछ भूमिका अदा कर रही है इसके पीछे?
राजनीतिक जो नेतृत्व है अभी काफी कमजोर है, शायद उनको लगने लगा था कि हमारे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है, सब अंतर्राष्ट्रीय जगत वाले करेंगे तो हम यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखेंगे। तो ये दूसरी वजह, ये भी अंदरूनी है।
एक वजह आपने सेना बताई, दूसरी वजह आपने राजनीति बताई, क्या इन दो वजहों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर भी कोई तीसरी वजह है नेपाल सरकार के इस फैसले के पीछे?
नेपाल हमेशा से कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा का जगह रहा है और अभी है कि अमेरिकी ओस्प्रे आ रहा है जो कि युद्धक विमान है, फिर इंग्लैंड से चिनूक आ रहा है, वो भी एक प्रकार का युद्धक हेलीकॉप्टर है। तो ये बात तो न चीन को पसंद आएगी और न भारत को पसंद आएगी। अप्रत्यक्ष तौर से चीन ने कि जो भारतीय बचाव और राहत के विमान है उस सीमा के बहुत नजदीक उड़ रही है, जिसको बाद में कहा गया कि उन्हें जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से हुई। इस सब को देखते हुए शायद कुछ देशों को लगा ये जो आदेश आया है वो भारत के उकसाहट पे आया है। उन्होंने भारतीय राजदूत से मुलाकात की, इसमें कहा गया है कि भारतीय राजदूत ने आश्वस्त करने की कोशिश की विदेशियों को। हो सकता है ऐसे ही कुछ अंदर से प्रवाद चीनियाओं का भी रहा हो।
अब जब ये विदेशी राहत कर्मी नेपाल से वापस चले जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि नेपाल के जमीनी हालात अभी ऐसे हैं कि नेपाल अपने दम पर राहत और बचाव का कार्य ठीक तरह से कर पाएगा?
जो बचाव का काम है वो बहुत ही विशेषज्ञता का काम होता है और जो नेपाल के यहाँ के संयंत्र है इनसे वो हो पाना संभव नहीं दिखता है। और राहत में भी अगर बाहर वाले भी है, जहाँ 10 हाथ है तो 20 है तो बेहतर है। अभी करीब करीब 30 लाख जनसंख्या प्रभावित है, कम से कम 3 लाख घर प्रभावित है, तो अभी तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इस वजह से भी इस निर्णय को सही नहीं कहा जा सकता है।
काठमांडू से ये थे सी के लाल, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि विश्लेषण कर रहे थे कि राहत कार्यों में कितना समय और लग सकता है और वहां की स्थिति क्या है। पिछले महीने इस भूकंप की वजह से एक गांव बताया जा रहा है कि लंग तंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और ये गांव ट्रैकिंग के लिए मशहूर था और कई देशों के पर्यटक यहां पर आया करते थे। बताया जा रहा है कि लगभग 300 लोग यहां पर मारे गए, जिसमें कि आधे से ज्यादा ऐसी आशंका है कि विदेशी पर्यटक हो सकते हैं। सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नितिन श्रीवास्तव को, जो कि काठमांडू से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, हम राहत कार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल आपसे यही कि इस समय क्या सूरत हाल है नेपाल का और राहत कार्य कितना बचा हुआ है?
देखिए, राहत कार्य अभी बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। लाखों घर तबाह हुए हैं, लाखों लोग जो है प्रभावित हैं इस भूकंप से। आपने अभी जिस गांव का जिक्र किया, ये दरअसल एवरेस्ट बेस कैंप के एक दूसरे छोर पर था और इस तरह के कई ऐसे गांव हैं जो एकदम मिट्टी में मिल चुके हैं। और ये राहत और बचाव कार्य से ज्यादा नेपाल के भविष्य के लिए बहुत बुरी 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 खबर है, क्योंकि जिस तरह से विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते थे पिछले साल, अगर हमें याद है तो माउंट एवरेस्ट के पास जो अवलांच आया था उसमें तमाम विदेशी पर्यटक मारे गए थे, इस साल फिर ये हुआ है, तो एक तरह से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी आगे आने वाले दिनों में, और राहत और बचाव कार्य सालों अभी वर्षों चलेगा। राहत का काम जो है, क्योंकि हजारों स्कूल तबाह हो गए हैं, अस्पताल तबाह हो गए हैं, तो ये बहुत बहुत लंबी चुनौती है अभी नेपाल के सामने।
नितिन, जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं लंगतंग, खबरें बहुत देर से आ रही हैं, और शायद इसकी वजह ये है कि जब तक लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो रही है।
जी, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर से ऊपर से जाकर सर्वेक्षण किया गया है कि साहब ये गाँव था यहाँ पर और अभी ये एकदम नक्शे से गायब है, लेकिन वहां पर उतरने की जगह नहीं है। ऊंचे ऑल्टीट्यूड, ऊंचे पहाड़ के इलाके हैं, और पैदल सारे रास्ते करीब करीब अंदर जाने के, नेपाल के अंदर जाने के करीब करीब सारे रास्ते प्रभावित हैं भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते। तो इसलिए आगे आने वाले हफ्ते और 10 दिन के अंदर इस तरह की मुझे डर है कि और खबरें आएंगी, बहुत ज्यादा खबरें आएंगी, जब राहत और बचाव कर्मी वहां तक पहुंच सकेंगे।
जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया सीधे कार्यक्रम में काठमांडू से शामिल होने के लिए। और अब यहीं पर अखबारों का रुख करते हैं, प्रभात पांडे मौजूद हैं। प्रभात, हम नेपाल का जिक्र कर रहे हैं और नेपाल की खबरों को कितनी सुर्खियां मिली हैं हमारे समाचार पत्रों में?
जी मोहनलाल जी, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी नितिन ने बताया कि अभी वहां राहत और बचाव का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर बचा हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है उसमें ये नेपाल ने जो कहा है कि भाई राहत और बचाव का काम पूरा हो गया है और जो भी विदेशी दल आए हुए थे अब वो अपने अपने देश वापस चले जाएं।
इस पे अभी हमने सीके लाल का एक इंटरव्यू सुना और वो विश्लेषण कर रहे थे।
जी जी जी, तो इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। साथ ही आंध्र प्रदेश में एक माओइस्ट दंपत्ति की गिरफ्तारी की खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी हेडलाइन बनाया है 40% ऑफ दिल्ली स्कूल किड्स फेल लंग कैपेसिटी टेस्ट। एक स्टडी का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक चार बड़े मेट्रो शहरों में दिल्ली के स्कूली बच्चों के फेफड़े जो है वो सबसे कमजोर साबित हुए। इसके लिए दिल्ली की प्रदूषित हवा को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा रिटेल व्यापार में बिग बाजार चलाने वाली फ्यूचर ग्रुप के भारतीय रिटेल में मर्ज होने की खबर को भी प्रमुखता मिली है। कहा जा रहा है कि इससे दोनों कंपनियों का टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। हिंदू में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरे देश में घूमें और सरकार की जो किसान विरोधी छवि बनाने की कोशिशें हो रही हैं उससे निपटें और किसानों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करें।
एक खबर मैं देख रहा हूं कि दैनिक जागरण मेरे सामने है और इसमें यह है कि अलकायदा के भारतीय शाखा प्रमुख ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि मोदी पर निशाना साधा गया है, और इस खबर के मुताबिक नई शाखा बनाने के मंसूबे बिखर जाने के बाद अलकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रहा है। और ये जो वीडियो है वो अलकायदा की मीडिया शाखा अस शबाब ने पोस्ट किया और इस खबर को सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने।
जी जी जी, और इसके साथ ही नई दुनिया में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर पार्टी के कार्यकर्ता के आरोप को हेडलाइन बनाया गया, जिसमें उन्होंने विश्वास की पत्नी पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का जो आरोप लगाया है वो है। साथ ही कुमार विश्वास का बयान भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है,
मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही, यही हेडलाइन दैनिक जागरण की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे अखबारों को समेटने के लिए। बात प्रधानमंत्री मोदी की। माओवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बस्तर दौरे का विरोध किया है। माओवादियों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद देश भर में जन विरोधी और देशी विदेशी कॉरपोरेट घराना परस्त आर्थिक व औद्योगिक नीतियों का अमल अभूतपूर्व तेजी से हुआ है। क्यों कर रहे हैं ये विरोध? रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को माओवाद प्रभावित बस्तर आने वाले हैं। उनकी उपस्थिति में रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के लिए और डिलमिली में अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं की लागत 24,000 करोड़ रुपए है। बस्तर में जो अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की स्थापना होनी है उसमें भारत सरकार के दो सार्वजनिक उपक्रम भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल और राष्ट्रीय खनिज निगम विकास लिमिटेड की संयुक्त भागीदारी है। रेल लाइन और अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट के एमओयू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी यात्रा को लेकर माओवादियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। दंडकारण्य ने स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुटसा उसेंडी की ओर से जारी इस बयान में आरोप लगाया गया है कि अपने लौह अयस्क एवं खनिज संसाधनों की सस्ती लूट एवं सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुगम बनाने की कवायद के तहत ही दिल्ली रावघाट रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। माओवादियों ने कहा है कि जगदलपुर रेल लाइन, अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की स्थापना और नया रायपुर में पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी का आना संयोग नहीं सुनियोजित है। बस्तर और राजनांदगांव के कई इलाकों में खनन का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा अबूझमाड़ के एक चौथाई इलाके पर सैनिक प्रशिक्षण शाला के नाम पर सैनिक हवाई अड्डे बनाने की कवायद चल रही है। हमने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शिवरतन शर्मा से राय ली।
वास्तव में माओवादियों के चलते विकास रुका हुआ है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन हब विकसित किया है, माओवादियों से प्रभावित लोगों से मिलने आ रहे हैं, इन सबका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है।
बस्तर के एक अखबार के संपादक वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र से माओवादियों के इस बयान का मतलब हमने जानना चाहा।
माओवादियों के किसी बयान को हल्के से लेना उचित नहीं है और दो बड़े एमओयू होने वाले हैं, इसके अंतर्निहित विषयों को लेकर के माओवादियों की यह राय मानी जा सकती है कि सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है और ये सब कुछ पूंजीपतियों के लिए हो रहा है।
माओवादियों के इस ताजा बयान की सनसनी बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक बनी हुई है और फिलहाल राज्य सरकार की चिंता में सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की सुरक्षा है, जिसे और कड़ी करने की कवायद शुरू हो गई है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आज से हम एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप किसानों की कहानी उन्हीं की जबानी सुनेंगे। ऐसे किसान जिनकी खेती किसानी को बेमौसम बारिश से भारी नुकसान पहुंचा, जहां ओलों की मार और बारिश की धार ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। इस कड़ी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से।
मेरा नाम रामसूख बेनीवाल है, मैं परमानगढ़ जिले के परलिका गांव में रहता हूं।
राजस्थान में पड़ता है गांव परलिका। मैं एक किसान हूं, 15 बीघे जमीन मेरे पास है और मैंने मेरे खेत में 5 बीघे में चने बोए थे, 3 बीघा सरसों की फसल थी, 2 बीघे गेहूं थी और बाकी जमीन मेरी खाली थी क्योंकि उसमें गुआर बोया हुआ था पहले। इतनी खेती पर मैंने जो खर्चा किया, वो खर्चा खेती के बर्बाद हो जाने के बाद में मैं कहता हूँ कि वो खर्चा ही पूरा नहीं हुआ। तूफान की और ओलों की मार के कारण चनों की जो पैदा है वो 4 क्विंटल या 5 क्विंटल बीघे की जो होने वाली थी वो क्विंटल बीघे पर आ गई। जो गेहूं है वो हमारे होती है 30-12 क्विंटल बीघे की जो गेहूं थी वो 6 क्विंटल बीघे पर आ गई और इसी तरह से जो सरसम की जो पैदा थी वो 5 क्विंटल बीघे की सरसम होती है वो 3 क्विंटल बीघे पर आ गई। इस तरह से फसल में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान इतना हो गया है कि फसल की लागत भी पूरी नहीं कर रहा है। अब पूरा साल जो है वो मेरे सामने पड़ा है और वो साल किस आधार पर घटेगा वो मैं आपको बता दूं। वो कर्जा लेना पड़ेगा, चाहे वो कर्जा साहूकारी हो, चाहे वो कर्जा बैंक से ले या कहीं से ले, लेकिन लागत के ज्यादा होने पर और प्रकृति की मार के कारण जो खेती में जो नुकसान हुआ है वो पूरे घर के साल भर के खर्चे को चलाने में अब बड़ी दिक्कतें आई। बच्चों की जो पढ़ाई है, एक पोता है वो पढ़ रहा है तो उस पर भी खर्च होता है, इस तरह से दिक्कतें बहुत आएंगी सामने।
BBC की विशेष श्रृंखला में आज राम स्वरूप बेनीवाल की कहानी, कल आपको सुनाएंगे एक और किसान की कहानी। और अब बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL 8 में कल भी 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 24 रन से मात दी। हालांकि बेंगलोर के सामने जीत के लिए केवल 149 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 19.4 ओवर में 124 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली जब तक मैदान में थे तब तक खेल ठीक ठाक नजर आ रहा था। विराट कोहली 48 रन बनाकर रन आउट हुए और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद बेंगलोर की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एबी डिविलियर्स ने 21 और दिनेश कार्तिक ने 23 रनों का योगदान दिया। चेन्नई के अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा एक बार फिर चल निकले और उन्होंने 19 रन देकर 3 और उनके जोड़ीदार ईश्वर पांडे ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके अलावा ब्रावो ने भी 17 रन देकर 2 विकेट झटके। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 148 रन बनाए। सुरेश रैना ने 52, फेफ डु प्लेसिस ने 24 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 29 रन बनाए। बेंगलोर के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 24 रन देकर 3 और हर्षल पटेल ने 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आईपीएल में ही कल खेले गए दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हराया। हैदराबाद के सामने जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य था लेकिन वो 9 विकेट खोकर 132 रन ही बना सके। हैदराबाद को शुरुआत में ही बड़ा झटका तब लगा जब उसके कप्तान डेविड वार्नर और नमन ओझा 6 रन तक पहुंचते ही उमेश यादव का शिकार हो गए। उनके बाद मोजेस हेनरिक्स ने 41 रनों का योगदान दिया और पारी के 18वें ओवर में बोथा की गेंदों पर करण शर्मा ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच में कुछ रोमांच पैदा करने की कोशिश की लेकिन अंततः करण शर्मा बोथा का ही शिकार बने। उन्होंने 20 गेंदों पर 32 रन बनाए। कोलकाता के उमेश यादव ने 34 रन देकर 2 और ब्रेड होग ने 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन बनाए। रोबिन उथप्पा ने 30, कप्तान गौतम गंभीर ने 31, मनीष पांडे ने 33 और यूसुफ पठान ने नाबाद 30 रन बनाए। हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने 42 रन देकर 2 और करण शर्मा ने 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। ये कोलकाता की 10 मैचों में 5वीं जीत रही।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हम सब की नजर।
आज जिन खबरों पर हमारी नजर होगी उनमें 7 मई को ब्रिटेन में होने वाला आम चुनाव, यमन में चल रहा संघर्ष और नेपाल से विदेशी राहत टीमों की वापसी प्रमुख हैं। ब्रिटेन में 7 मई को जो आम चुनाव होने वाला है उसके लिए चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। चुनाव से पहले सन अखबार के एक चुनावी सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी और मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। इस सर्वे में दोनों ही पार्टियों को 33% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। इस चुनाव को हाल के सालों में सबसे कड़ी टक्कर वाला चुनाव माना जा रहा है और तमाम चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि 650 सीटों वाली ब्रितानी संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं लग रहा है। इसके अलावा अमेरिका के डलास शहर में हुई गोलीबारी की घटना की जांच में कुछ और नई बातें सामने आ सकती हैं। इस घटना में अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस घटना में शामिल दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है, हालांकि पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है कि वो अरब गठबंधन के नेतृत्व में जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है उसे रोकने पर विचार कर रहा है ताकि इस युद्ध से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। यमन में जो संघर्ष हो रहा है उस पर क्या आज नया आ सकता है इस पर भी हमारी नज़र होगी। साथ ही नेपाल से विदेशी राहत टीमों की वापसी आज शुरू हो सकती है नेपाल की अपील के बाद।
तो इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी और यहीं पर हम आपको बता दें कि bbchindi.com के पन्ने पर भारत ने नेपाल के लिए क्या क्या किया, अगर आप एक ग्राफिक के माध्यम से समझना चाहते हैं कि कितने खाने के पैकेट और राशन दिए गए, पानी कितना दिया गया, दवाइयां कितनी गई, टेंट कितने भेजे, कंबल कितने भेजे, इस अगर ग्राफिक को भारत के विदेश मंत्रालय के स्रोत के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आइए। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर प्रभात पांडे से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के डलास शहर के गारलैंड इलाके में हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनके नाम हैं एरिजोना निवासी एल्टन सिम्पसन और नादिर सोफी। सेनेगल ने कहा है कि वो यमन में शिया हूती विद्रोहियों से लड़ाई में अरब गठबंधन की मदद करेगा और इसके लिए अपने 2000 सैनिक भेजेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल से किसी भी कीमत पर नस्ल भेद को खत्म करना होगा। राजधानी तेल अवीव में इथियोपियाई मूल के एक इसराइली सैनिक की 2 पुलिस वालों ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वहां दंगे भड़क गए थे। पिछले महीने आए भूकंप की वजह से नेपाल का एक गांव लंगतंग पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये गांव ट्रैकिंग के लिए मशहूर था और कई देशों से पर्यटक यहां आते थे। यहां 300 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा के इस अंक में बस इतना ही। 1 घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।